नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। कोसी बराह, वीरपुर बराज और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा और कोसी नदी में एक बार फिर दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। उच्चतम न्यायालय ने जल संसाधन विभाग के तहत कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के बिहार सरकार के फैसले को अनुचित करार दिया। और राजगीर में 11 नवंबर से होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप से पहले प्रदेश के सभी जिलों में होगा ट्रॉफी टूर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीतामढ़ी और दरभंगा में बागमती तथा अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी सोनाखान और कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर है। इधर लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जिले के बथनाहा, डुमरा और रून्नी सैदपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पानी फैल रहा है। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के दोनों किनारों पर फिर से कटाव शुरू हो गया है।
कटाव से जमीनें नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। साथ ही तरियानी प्रखंड के जगदीशपुर कोठिया के पास तटबंध पर कटाव का दबाव काफी बढ़ गया है। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की परेशानियां अभी भी कायम हैं। बाढ़ के पानी में खाद्यान्न सहित अन्य सामग्री भीग जाने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। कुछ क्षेत्रों में लोग अभी भी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह।
इधर दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कोसी बराज क्षेत्र से 1,99,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वीरपुर बराज और वाल्मीकि नगर बराज से भी पानी छोड़ा गया है। इधर भागलपुर में गंगा और कोसी नदी के बढ़ते दबाव के कारण जल संसाधन विभाग ने भागलपुर में अभियंताओं को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। गंडक नदी पर बना सारण मुख्य बांध हेजलपुर गांव के पास लगभग 8 फीट धस गया है। इधर मुंगेर के हवेली खड़गपुर तारापुर मार्ग के पास गुहिया नदी पर बने पुल का ऊपरी हिस्सा नदी के तेज बहाव के कारण लगभग 1 फीट धस गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के 13 जिलों के 4,39,000 परिवारों के बैंक खातों में कुल 307 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की है। प्रति परिवार 7,000 रूपये का भुगतान किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भी 7,000 रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि 9 अक्टूबर को डीबीटी के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि लगभग 48,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच सहायता राशि भेजी जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे, 1 क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया, पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित 48,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, 7,000 रुपया पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को डीबीटी के माध्यम से सभी के खाता में भेजेंगे।
मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय परिसंचरण के क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। ये वर्षा कुछ किसान भाइयों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जहां पर देर से रोपाई हुई है उस फसल के लिए फायदेमंद हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश भर के लगभग 9 करोड़ 40 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 20,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का 5,600 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती में नाम आना बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और नवाचार की ओर ले जा रही है, जबकि कांग्रेस उन्हें नशे की अंधेरी दुनिया में धकेलना चाहती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे का किसी भी हालत में निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल रेल के निजीकरण के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान, सुरक्षा और मानव संसाधन पर केंद्रित बहुत निवेश किया है। श्री वैष्णव ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के 40वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि बल में महिला जवानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय में वंचित तबकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाकर उनके हितों को सुनिश्चित किया जाएगा और संयुक्त संसदीय समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने राज्य में जल संसाधन विभाग के तहत 6,000 से अधिक कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के बिहार सरकार के फैसले को अनुचित करार दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र वर्मा की पीठ ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चयन प्रक्रिया को रद्द करना अस्वीकार्य है। न्यायालय ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नई सूची के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की आज पटना स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माँ के स्वरूप की पूजा करने से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं तथा सौम्यता और निर्भयता में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। प्रदेश में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में स्वच्छता से संबंधित बैनर पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने राज्य के सभी नगर निकायों को इस आदेश के पालन के निर्देश दिए हैं। श्री नवीन ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बेहतर स्वच्छता मापदंड अपनाने वाली पूजा समितियों और पंडालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए 6,00,000 रूपये से अधिक की राशि जारी की गयी है। प्रदेश के सभी जिलों में 9 अक्टूबर को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। उद्योग विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान का वितरण किया जाएगा। इसके बाद 5 नवम्बर और 3 दिसम्बर को भी ऋण शिविर लगाए जाएंगे। राज्य में डेंगू पीड़ित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 144 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से 86 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं औरंगाबाद में 9, गया में 6, नालंदा में 5, मुजफ्फरपुर में 4, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण जिले में 3-3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले में चिकनगुनिया के भी 2 नए मरीजों की पहचान हुई है। नालंदा के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के पहले प्रदेश के सभी जिलों में ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पटना में चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि ब्रांड बिहार कार्यक्रम का थीम, लोगो, थीम गीत जल्द रिलीज होगा। प्रदेश में 25 खेलों के लिए 103 कोच बहाल किए जाएंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इसके लिए 14 नवंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रनों से हरा दिया। दुबई में कल शाम खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। 161 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम 102 रन ही बना सकी। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में शॉर्ट सर्किट के कारण अगलगी की घटना में कंप्यूटर लैपटॉप समेत 20 लाख रुपए से अधिक के सामान जलकर नष्ट हो गए। पटना नगर निगम और जीविका की ओर से मिशन टोटल सेग्रीगेशन के तहत एएन कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें नगर निगम के सफाई इंस्पेक्टर, ड्राइवर, हेल्पर, मोबिलाइजर और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुईं। मधुबनी शहर में 40 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म होने पर भी 7 दिनों तक नहीं कटेगी बिजली, सॉफ्टवेयर को किया जा रहा है अपडेट। दैनिक भास्कर ने बिजली दर से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती शाम में महंगी बिजली मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, एससी एसटी के आरक्षण में आरक्षण पर फिर सुप्रीम मुहर, उप वर्गीकरण के फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज। प्रभात खबर ने लिखा है, रेलवे की अनोखी पहल, फेस्टिवल सीजन में रेलवे स्टेशन से रात में लोगों को घरों तक छोड़ेगी पुलिस, डायल 112 से पुलिस की ले सकते हैं मदद। आज अखबार की सुर्खी है, सूबे के प्राइमरी मिडिल स्कूलों में एकेडमिक कैलेंडर से होगी पढ़ाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। कोसी बराह, वीरपुर बराज और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा और कोसी नदी में एक बार फिर दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। उच्चतम न्यायालय ने जल संसाधन विभाग के तहत कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के बिहार सरकार के फैसले को अनुचित करार दिया। और राजगीर में 11 नवंबर से होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप से पहले प्रदेश के सभी जिलों में होगा ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।